महाबंध पुस्तक पहली लेक्चर नंबर 6। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सौवसाहूणम्। भूतबलिप्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकम्, महाधवलविख्यातम् महाबंधम नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक द्वारा रचित यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का छठा खंड है। इसमें जो पहली पुस्तक है प्रकृति बंध अधिकार, उसमें अभी हम 25 पृष्ठ पर आए हैं। यहाँ धवला की छठी पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं हम, तो यहाँ शुरुआत में ही त्रुटित अंश है, तो वो त्रुटित अंश को उन्होंने भी मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण की प्ररूपणा करके लिख लिया है संपादक महोदय ने, ये सुमेर चंद रिवाकर जी ने, और हम अभी उसको प्रकृति समुत्कीर्तन नाम का अधिकार छठी पुस्तक जो चूली का रूप में है वहां पर भी इसकी चर्चा है, और ये भी बुद्धबली आचार्य की ही रचना है, इसलिए वहाँ डिटेल टीका को न पढ़ते हुए हम केवल सूत्रों को पढ़ रहे थे और कुछ कुछ बिंदु हमने टीका में से भी पढ़े थे। कल हम आए थे पृष्ठ संख्या 49 पर, 49। उन्होंने पहले मूल प्रकृतियों के नाम बताए हैं और अभी उत्तर प्रकृतियों की बात चल रही है। ज्ञानावरण की 5 है, दर्शनावरण के 9 है, वेदिनी की 2 है, मोहिनी की 28 है, बंध की अपेक्षा कितनी होती है 26 और सत्व की अपेक्षा 28। फिर आयु 4 है। अब ये नाम की बात चल रही है यहाँ पर, 49 पृष्ठ पर नीचे ये 27 नंबर का सूत्र है ना, कि नाम कर्म की 42 पिंड प्रकृतियां है। एक्चुअली पिंड उसमें से 14 रूप ही है, परंतु पिंड अपिंड मिलकर अगर कहेंगे तो वो 42 होते हैं, एक एक सिंगल अगर हम गिनेंगे तो 93 होते हैं। और पिंड का अर्थ क्या है, ग्रुप। जैसे गति नाम कर्म कहने से उसमें चारों गति आ गई, जाति नाम कर्म कहने से पांचों आ गए, तो हम उसको गति जाति शरीर बंधन ऐसा कहेंगे तो हमें ये पूरा 93 की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में हम 42 में उसको कह सकते हैं, उसको कहेंगे पिंड प्रकृतियां। उसमें ये स्टार्टिंग वाली 14 है वही ग्रुप वाली, बाकी तो सिंगल सिंगल है, याद है ना, स्टार्टिंग वाले गति है, जाति है, शरीर है, बंधन है, संघात है, संस्थान है, सहन अंगोपांग है, सहनन है, फिर स्पर्श रस गंध वर्ण को भी लिया क्योंकि उसकी भी अनेक प्रकृति है न, और विहाय गति और गत्यानुपूर्वी। इस तरह से ये 14 प्रकृति तो ग्रुप वाली है, एक से ज्यादा है, बता ना, अनुपूर्वी और विहाय गति। अभी हम यहां से पढ़ते, देखो 50 पृष्ठ पर लेना, यहां बता रहे वो 42 के नाम बताएंगे कि गति नाम, जाति नाम, शरीर नाम, शरीर बंधन नाम, शरीर संघात नाम, शरीर संस्थान नाम, यहाँ कॉमा नहीं चाहिए, शरीर संस्थान एक शब्द है, शरीर अंगोपांग नाम, शरीर सहनन नाम, वर्ण नाम, गंध नाम, रस नाम, स्पर्श नाम, अनुपूर्वी नाम। ये विहाय गति बाद में लेते, पर हमको वो ग्रुप वाली है इसलिए हमने पहले बताया था। अगुरु लघु नाम, उपघात नाम, परघात नाम, उच्छ्वास नाम, ये 4 एक साथ हमको याद रखने के लिए सुलभ होते हैं। हमेशा ये चार की यानी ग्रुप हम बना सकते हैं, अग्रु लघु उपघात परघात उच्छ्वास, उसके बाद आताप नाम और उद्योत नाम, फिर विहायुगति नाम। अब ये जो है वो तो चार युगल है, जैसे त्रसनाम स्थावर नाम, बादर नाम सूक्ष्म नाम, पर्याप्त नाम अपर्याप्त नाम, प्रत्येक शरीर नाम और साधारण शरीर नाम। अब है वो छह युगल है, स्थिर नाम अस्थिर नाम, शुभ नाम अशुभ नाम, सुभग नाम दुर्भग नाम, सुस्वर नाम दुस्वर नाम, आदेय नाम अनादेय नाम, यश कीर्ति नाम और अयश कीर्ति नाम, ये छह और छह बारह हो गए। अब निर्माण नाम और तीर्थंकर नाम, ये नाम कर्म की 42 पिंड प्रकृतियां है। अब आगे बढ़ते हम, क्योंकि समुत्कीर्तन है वो प्रकृति है, बस इतना ही कथन समुत्कीर्तना में होता है। फिर भी कौन सी प्रकृति का क्या काम वगैरह, जो वीरसेन आचार्य ने उसकी जो धवला में छठी पुस्तक में टीका लिखी है, वो तो अपना विषय हुआ है, इसलिए हम केवल वो सूत्रों को पढ़ेंगे आगे। ये सभी प्रकृतियों का कार्य क्या है उसकी चर्चा विस्तार से की हुई है। अब हम आते हैं 68 पेज पर ना, एक मिनट, 67, हाँ 67 पेज पर। जो गति नाम कर्म है वो चार प्रकार का है, नरक गति नाम कर्म, तिर्यक गति नाम कर्म, मनुष्य गति नाम कर्म, देवगति नाम कर्म। देखो हमारे सिद्धांत ग्रंथों में यही ऑर्डर है, कहीं पर भी गति हो, गत्यानुपूर्वी हो, या जब ओघ से कहते हैं और फिर आदेश से कहेंगे, कोई भी बंद हो, उदय हो, सत्व हो, जो कुछ है, तो पहले नरक में बताएंगे, फिर तिर्यक में, फिर मनुष्य में, फिर देवों में, ये ऑर्डर है उनकी, ऐसे कोई रीजनिंग नहीं, परंतु इसी ऑर्डर से हर जगह चलता है। तो गति नाम कर्म चार प्रकार का देखा हमने, गति नरक गति नाम कर्म, तिर्य गति नाम कर्म, मनुष्य गति नाम कर्म और देव गति नाम कर्म। जो जाति नाम कर्म है वो पांच प्रकार का है, एक इंद्रिय जाति नाम कर्म, द्विइंद्रिय जाति नाम कर्म, तीनइंद्रिय जाति नाम कर्म, चतुरइंद्रिय जाति नाम कर्म, पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म, इसको जाति कहते हैं। अब 68 पेज पर, जो शरीर नाम कर्म है वो पांच प्रकार का है, औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रिक शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर नाम कर्म, तेजस शरीर नाम कर्म और कारमान शरीर नाम कर्म। तो मेरा प्रश्न है, औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रिक शरीर नाम कर्म और आहारक शरीर नाम कर्म कौन सी वर्गणा से बना है? ये किसकी बात चल रही है? नाम कर्म की बात चल रही है। वो शरीर ने पूछा, हमेशा ऐसे उत्तर आता है शिविरों में भी, हम पूछते हैं। देखो देखा, औदारिक वैक्रिक आहारक शरीर कौन से बने, तो आहार वर्गना से, और हम ये नाम कर्म को पढ़ रहे हैं, ये तो कारमान वर्गना, पांचों शरीर कारमान वर्गना से बने, शरीर नाम कर्म। हाँ, अभी आगे बढ़ते हैं। उसके फिर उन्होंने वो संयोगी भंग भी किए थे, एक एक शरीर और दो शरीर इस तरह से, उसको छोड़ देते। 72 पेज पर, नहीं एक मिनट, बीच में गया। हाँ, शरीर नाम कर्म हुआ ना, अभी उसके बाद 70 पेज पर बंधन नाम कर्म, उसी नाम के बंधन नाम कर्म भी है, इसलिए जब हम बाद में बताएंगे तो ये बंधन और संघात को भी उसी में इंक्लूड कर देंगे। जो शरीर बंधन नाम कर्म वह पांच प्रकार का है, औदारिक शरीर बंधन नाम कर्म, वैक्रिक शरीर बंधन नाम कर्म, आहारक शरीर बंधन नाम कर्म, तेजस शरीर बंधन नाम कर्म और कारमण शरीर बंधन नाम कर्म। यानी वो औदारिक शरीर के परमाणु परस्पर बंध को प्राप्त होते हैं, इस तरह से एक एक शरीर के अपने आपस में परस्पर बंधन प्राप्त होते हैं, वो बंधन नाम कर्म। अब संघात नाम कर्म, जो शरीर संघात नाम कर्म है वो पांच प्रकार का है, औदारिक शरीर संघात नाम कर्म, वैक्रियक शरीर संघात नाम कर्म, आहारक शरीर संघात नाम कर्म, तेजस शरीर संघात नाम कर्म और कार्मण शरीर संघात नाम कर्म। यानी वो तो एक बंध तो होते हैं, परंतु पूरे जो अवतारिक शरीर का एक स्कंद हो जाता है ना, उसमें छिद्र रहित हो जाता है, उसको वो संघात कहते हैं। अब संस्थान, शरीर संस्थान नाम कर्म है, वो छह प्रकार का है। समचतुरस्र शरीर संस्थान नाम कर्म है। न्यग्रोध परिमंडल शरीर संस्थान नाम कर्म, स्वाति शरीर संस्थान नाम कर्म, कुब्ज शरीर संस्थान नाम कर्म, वामन शरीर संस्थान नाम कर्म और हुंड कहते हैं, उसको हुंडक भी कहते हैं, शरीर संस्थान नाम कर्म। देखो हमने देखा तो गति और जाति का उदय तो विग्रह गति में भी होता है उस कर्म का। तो शरीर संबंधी जो है ना, वो तो वहाँ जहाँ शरीर धारण करना है पर्याप्ति पूर्ण नहीं, पर्याप्ति के पहले समय से भव धारण करना कहते उसको, यानी शरीर का संयोग हुआ तब जाके संस्थान का उदय हुआ, उसके पहले वो गत्यानुपूर्वी का होता है ना। अब इसके संस्थानों के आकारों की बात चर्चा की है, अब आगे आते हैं पेज नंबर 72। जो शरीर अंगोपांग नाम कर्म है वह तीन प्रकार का है, औदारिक शरीर अंगोपांग नाम कर्म, वैक्रियक शरीर अंगोपांग नाम कर्म और आहारक शरीर अंगोपांग नाम कर्म। आपको कुछ विशेषता पता चली शरीर नाम कर्म और अंगोपांग में क्या भेद देखा हमने उसमें भी? हाँ, यहाँ तीन है वहाँ पांच थे। तेजस और कार्मण में कोई अंगोपांग नहीं होता, वो शरीर में होता है। तो ये शरीर अंगोपांग का नाम कर्म का उदय सभी जीवों को होगा कि नहीं होगा? एक इंद्रिय को छोड़कर सबको होगा। अब आते हैं 73 पेज पर। जो शरीर सहनन नाम कर्म है वह छह प्रकार का है, वज्र ऋषभ वज्र नाराज शरीर सहनन नाम कर्म, वज्र नाराज शरीर सहनन नाम कर्म, नाराज शरीर सहनन नाम कर्म, अर्ध नाराज शरीर सहनन नाम कर्म, कीलक शरीर सहनन नाम कर्म और असंप्राप्ता सुपाटिका शरीर सहनन नाम कर्म। यानी जो हड्डियों का संचय है उसको सहनन कहेंगे और वेष्टन को ऋषभ कहेंगे। वेष्टन समझते ना, हड्डियों का वेष्टन, उसके पेरियोस्टियम भी कहेंगे, उसको जो लपेटा जाता है हड्डी, जिसमें ऊपर का कवरिंग, हड्डियों का कवरिंग कहेंगे। वेष्टन किसको कहेंगे? ये पैकिंग आता है आपका, बिस्कुट किस में आते हैं वो ऊपर वेष्टन जो कुछ है ना, है कुछ भी चीज है उसका जो ऊपर का वेष्टन है उसको ये हड्डियों का वेष्टन। और वो वज्र के समान अभेद्य तो उसको वज्र ऋषभ कहते हैं। इसमें पूछो आप।
कार्मण वर्ग तो जीव के प्रत्येक प्रदेश में फैली है, तो शरीर नाम कर्म औदारिक शरीर नाम कर्म का अंगोपांग है और कार्मण शरीर में अंगोपांग नहीं है, तो उसमें डिफरेंस क्या गिना जा रहा है?
डिफरेंस है नहीं, वो अंगोपांग की रचना अंगोपांग शरीर नाम कर्म के कारण हुई है।
पर वहाँ पे भी कार्मण वर्ग तो
होने तो ना, पर वो तो कार्मण उसके जुड़े है, उसका कार्मण का अंगोपांग अपना नहीं होता, अंगोपांग तो औदारिक शरीर का ही है। अब उसी आकार में कहो और उसी उसमें कार्मण और तेजस ढले है, उसमें क्या है? उसमें विशेषता कुछ नहीं है उसकी। हाँ देखो देखो, अब पूछेंगे सहनन नाम कर्म का उदय तो सभी परमाणु में सभी जगह है, तो हड्डी विशिष्ट ठिकाने क्यों उत्पन्न होती है? अभी ऐसा प्रश्न पूछने जैसा है, उसमें भी निर्माण का है, प्रमाण निर्माण है, स्थान निर्माण है, बहुत सारी विशेषता है। हम तो 93 तो कुछ नहीं है, असंख्यात लोक प्रमाण भेद है इसके अंदर, ये तो मुख्य भेद बताए ना यहाँ पर। अभी हम आगे आते हैं, ये तो हमने सहनन तक आ गए ना, ये छह नाम हमको देखो, ये प्रकृतियों के नाम इसके आगे याद रखना आवश्यक है। क्यों? ये पूरी पुस्तक ही प्रकृति बंध पर है आधारित, क्योंकि आगे उत्कृष्ट का उसका होता है, एक साथ कौन सी बंध सकती है, कोई भी प्रकृति लगातार कितने काल तक बंध सकती है, अगर उसमें नहीं बंधे तो अंतर कितना पड़ सकता है, ये सब बातें आने वाली है। इसलिए सभी प्रकृतियों के नाम इस नाम कर्म में हमको थोड़ा याद करना है, बाकी तो क्या बहुत आसान है। तो ये प्रकृतियों के नाम एक बार याद हो जावे, ये 42 याद करना तो ऐसा आसान है, केवल गति जाति शरीर इतना कहने से भी फिर उसमें कैसे सोचना क्या, जब वो विषय आएगा तो हम देखेंगे उसको। जो वर्ण नाम कर्म है वो 5 प्रकार का है, कृष्ण वर्ण नाम कर्म, नील वर्ण नाम कर्म, रुधिर वर्ण नाम कर्म, हरिद्र वर्ण नाम कर्म और शुक्ल वर्ण नाम कर्म। अभी उसमें कॉम्बिनेशन से बहुत सारे वर्ण होते हैं, परंतु ये मुख्य यही होते हैं। जो गंध नाम कर्म है वह 2 प्रकार का है, सुरभि गंध और दुरभि गंध, यानी जिसको हम सुगंध और दुर्गंध कहते हैं। जो रस नाम कर्म है वह 5 प्रकार का है, तिक्त नाम कर्म, कटुक नाम कर्म, कषाय नाम कर्म, आम्ल नाम कर्म और मधुर नाम कर्म। जो स्पर्श नाम कर्म है वह 8 प्रकार का है, कर्कश नाम कर्म, मृदुक नाम कर्म, गुरुक नाम कर्म, लघुक नाम कर्म, स्निग्धर नाम कर्म, रुक्ष नाम कर्म, शीत नाम कर्म और उष्ण नाम कर्म, यानी ये सब मिलकर 20 भेद हो गए। ये 20ों के ही प्रशस्त भी होते हैं और 20 के 20 अप्रशस्त भी होते हैं। अब आते हैं 76 पृष्ठ पर। जो अनुपूर्वी नाम कर्म है वह 4 प्रकार का है, नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी नाम कर्म, तिर्यक गति प्रायोग्यानुपूर्वी नाम कर्म, मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी नाम कर्म और देव गति प्रायोग्यानुपूर्वी नाम कर्म। ये मोड़ वाली विग्रह गति में ही इसका उदय होता है, जिस गति का उदय है उसी गत्यानुपूर्वी का उदय होता है और पूर्व भव का आकार वहां रहता है कायम। दूसरा भी उसका कार्य है कि वो पर भव में वो ले जाने में, क्योंकि वहीं पर उसका उसी क्षेत्र में उसका उदय है, उसको क्षेत्र विपाकी भी कहते हैं इस कर्म को। जैसे आयु को भव विपाकी कहते हैं, ये क्षेत्र विपाकी है, घाती कर्म सारे जीव विपाकी है और नाम कर्म में कुछ जीव विपाकी है और ये क्षेत्र विपाकी है ये, और बाकी पुद्गल ये केवल अनुपूर्वी है उसको क्षेत्र विपाकी, क्योंकि उसी क्षेत्र में विग्रह गति मोड़ वाले जो फैले हुए प्रदेश है वहां पर उसका उदय पाया जाता है। ये हो गया अनुपूर्वी। अगुरु लघु नाम कर्म, उपघात नाम कर्म, परघात नाम कर्म, उच्छ्वास नाम कर्म, आतप नाम कर्म और उद्योत नाम कर्म। इसलिए उनको एक इकट्ठा ले लिया सबको। विहाय गति नाम कर्म वह 2 प्रकार का है, प्रशस्त विहाय गति और अप्रशस्त विहाय गति। अब त्रस नाम कर्म, स्थावर नाम कर्म, ये याद रखने के लिए 4 युगल और 6 युगल, 4 में त्रस स्थावर बादर सूक्ष्म पर्याप्त पर्याप्त साधारण और प्रत्येक, इस तरह से। तो त्रस नाम कर्म, स्थावर नाम कर्म, बादर नाम कर्म, सूक्ष्म नाम कर्म, पर्याप्त नाम कर्म, इनको आदि लेकर निर्माण और तीर्थंकर नाम कर्म तक, यानी किस किस को लेना, पर्याप्त के बाद अपर्याप्त नाम कर्म, प्रत्येक शरीर नाम कर्म, साधारण शरीर नाम कर्म, स्थिर नाम कर्म, अस्थिर नाम कर्म, शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, सुभग नाम कर्म, दुर्भग नाम कर्म, सुस्वर नाम कर्म, दुस्वर नाम कर्म, आदेय नाम कर्म, अनादेय नाम कर्म, यश कीर्ति नाम कर्म, अयश कीर्ति नाम कर्म, निर्माण नाम कर्म और तीर्थंकर नाम कर्म। अब गोत्र कर्म की 2 प्रकृतियां हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। अब अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां हैं, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, परिभोगांतराय और वीर्यांतराय। इस तरह से ये लास्ट लाइन है 78 पेज की। इस प्रकार प्रकृति समुत्कीर्तन नाम की प्रथम चूलिका समाप्त हुई। यहाँ लिखा है 15/9/4 अमेरिका के लिए प्रस्थान, पहली बार हम गए थे तभी। हाँ, हम आते अभी अपने 25 नंबर का पेज है महाबंध पुस्तक, पहले आपके पास नहीं होगी ना, आपको बैठना है तो सामने आके इनके साथ बैठ जाओ। वो पीछे रखो पुस्तकें, बाकी खाली आप आना आगे। हाँ देखो पेज नंबर है 25, ये ऊपर गाथा सूत्र है और नीचे उसका अर्थ और विशेषार्थ भी है, इसे पढ़ेंगे हम 25 पेज पर। अयनम संवत्सर पलिदोपम सागरोपमादया विभवन्ति ओगाहना जहन्ना नियमादु सुहमनियोद जीवस्स यद्देहो तद्देहि जहन्नयम खेत्तदो ओधि। अवधि ज्ञान का द्रव्य की अपेक्षा जघन्य क्षेत्र कितना है वो बता रहे। अयन संवत्सर पल्योपम सागरोपम आदि होते, उसके पहले का जो कुछ पार्ट है वो निकल गया था, त्रुटित अंश में चला गया था। ये तो कालों के भेद कैसे होते हैं उसकी बात होगी, आवली है, अन्य अन्य जो लव है, मुहूर्त है, उसकी चर्चा पहले की होगी उन्होंने। अवधि ज्ञान के क्षेत्र की प्ररूपना करने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं, सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्तक निगोदिया जीव की जघन्य उघाना है। जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र उसके शरीर प्रमाण है। उसके शरीर प्रमाण है उसका अर्थ क्या है, ये तो जीव के जो अवगाहना है उससे बाहर, ये तो सूक्ष्म निगो की कितनी जघन्य अवगाहना, उतने क्षेत्र तक वो जान सकते हैं, उसके बाहर वाले क्यों नहीं जाएंगे। विशेषार्थ, सूक्ष्म लब्धि पर्याप्त निगोदिया जीव के रुजुगति से उत्पन्न होने के तीसरे समय में, देखो ज्ञान की बात है तो हमने वो तो पहला समय लिया था 6012 भव किए और अंतिम भव में लिया था, वो पर्याय ज्ञान के लिए बताया था। अब यहाँ मिनिमम क्षेत्र की बात है, क्योंकि पहले समय में वो आयताकार होता है, दूसरे समय में समचौकोर हो जाता है, तीसरे समय में गोल होता है, तो उसका क्षेत्रफल मिनिमम उस तीसरे समय में होता है। तो उत्पन्न होने के तीसरे समय में, और वो भी रुजुगति से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि मोड़ वाले से उत्पन्न होगा तो पहले दंड तक दूसरे दंड तक उसकी अवगाहना उतनी बड़ी हो जाती है, इसलिए मोड़ वाला नहीं लिया। तो उसके तीसरे समय में घनांगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण सर्व जघन्य अवगाहना होती है। उस समय निगोदिया की शरीराकृति वर्तुलाकार होने से सबसे कम क्षेत्रफल रहता है। हमने देखा ना, कोई चौकोन है और उतनी डायमीटर का गोल करेंगे तो बाकी के कोण रह जाते हैं, तो उसके एरिया भी कम हो जाती है, उतना जघन्य अवधि का क्षेत्र है। अब क्षेत्र तथा काल की अपेक्षा अवधि ज्ञान संबंधी 19 कांडकों का निरूपण करते हैं। 19 कांड का अर्थ नहीं, ये जघन्य जो भेद है वो देशावधि का ही होता है, सबसे जघन्य है वो देशावधि का ही जघन्य में जघन्य। देखो अभी ये कांडक किसको कहना, वो जो अवधि ज्ञान के भेद बहुत सारे ना, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक, तो ये देशावधि के जो 19 कांडक बताए हैं, तो उसमें कैसे समझना, सबसे जो पहला भेद है या पहला कांडक है उसमें जघन्य कितना उत्कृष्ट कितना, यानी उसकी मर्यादा, पहले कांडक यानी उसको क्षेत्र की मर्यादा, क्षेत्र और काल दोनों की मर्यादा, यानी कितने क्षेत्र तक और कितने काल आगे पीछे तक जानता है उसको क्षेत्र और काल की मर्यादा कहनी, उसको 19 कांडकों में बताया, 19 अलग अलग। तो प्रथम कांडक में ऊपर पढ़ेंगे, 2 नंबर का पढ़ेंगे पहले, दूसरे कांडक में बताए ना, 2 कांडक बताए, अंगुल मावली आए भागम संखे जदो विसंखे जा अंगुल मावली अंतो आवलियम अंगुल पुधत्तम। इसका अर्थ देखते पहले, प्रथम कांडक में अंगुल का असंख्यातवां भाग जघन्य क्षेत्र है, जो अभी हमने निगोद का देखा था। आवली का असंख्यातवां भाग जघन्य काल है। आवली के असंख्यातवें भाग काल वर्तमान से, अभी वो तो नहीं के बराबर है, इसने आगे पीछे का जानेंगे, आगे भी उतना पीछे भी उतना। अब ये जघन्य हुआ, पहले कांडक का जघन्य हुआ। अब पहले कांडक का उत्कृष्ट कितना है? अंगुल का संख्यात्वा भाग उत्कृष्ट क्षेत्र है। पहले अंगुल का असंख्यात्वा भाग देखा था, अभी अंगुल का संख्यात्वा भाग होता है और आवली का संख्यात्वा भाग उत्कृष्ट काल है। दूसरे कांडक में घनांगुल प्रमाण क्षेत्र है और कुछ कम आवली प्रमाण काल है। अब ये जो पहले का जो उत्कृष्ट है वो दूसरे का जघन्य होगा, तो उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए अभी इसके आगे हर एक का उत्कृष्ट उत्कृष्ट बताएंगे। इसलिए कहते दूसरे कांडक में घनांगुल प्रमाण क्षेत्र है और कुछ कम आवली प्रमाण काल है। विशेषार्थ, यहाँ दूसरे तीसरे आदि कांडकों में उत्कृष्ट की अपेक्षा वर्णन किया गया है। अब कहते तीसरे कांडक में, ये तो ऊपर का हमको पढ़ना है, अंगुल पृथक अंगुल पुदत्तम, ये दूसरे श्लोक का ही वहाँ ऊपर अर्थ है, एक लाइन रह दी थी। तीसरे कांडक में अंगुल पृथक्त्व क्षेत्र है, अंगुल पुदत्तम, और आवली पृथक्त्व प्रमाण काल है। सूत्र अब पढ़ना है, दो नंबर का हमने पढ़ा था, अभी तीसरा पढ़ना है और बाद में तीसरे का अर्थ करेंगे। आवलीय पुदत्तम पुण हत्थो वथा गा उदम मुहूर्तंतो जो जन भिन्न मुहूर्तम दिवसंतो पन्नुवी संतु। चतुर्थ कांडक में आवली पृथक्त्व काल है और हस्त प्रमाण क्षेत्र है। अवधि ज्ञान के विषय के कांडक की बात है। जरा जीव कांड निकालना, पहला भाग, ये सब पढ़े हुए हम। जीव कांड तो यहाँ सुबह दो बार हुआ है, शाम को एक बार हुआ है, कितनी बार हमने शिविर भी किए हैं, है ना? आपको भी ले लो, वो ज्ञान मार्गणा निकालो। गाथा आवली असंख्य बाबा जहने कालो कमे ने समय न वड्डी दे सही वरम, वो तो कितने कितना बढ़ता है उसकी बात है। नहीं नहीं वो नहीं बात, वो अवधि ज्ञान का जो है ना, 19 कांडक। द्रव्य की अपेक्षा भेद और क्षेत्र की अपेक्षा। पहले द्रव्य की अपेक्षा भेद बताए हैं, फिर बाद में में एक मिनट जरा ये देखना, आप इंडेक्स देख लो, वो कांडकों की बात उसमें आएगी। ज्ञान मार्गना श्रुत अवधि ज्ञान के भेद उसके स्वामी स्वरूप 531 दस से पच्चीस तक ही सब कुछ है। हाँ अच्छा 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 उसमें अभी जो हम पढ़ रहे वो 403। अच्छा 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 गाथा दो तीन वगैरह जो है ना उसमें नंबर कितना 1 2 3 4 लिखे ना 403 404। अच्छा अच्छा हाँ वो तो निकाली थी अभी मैंने 400 तक देखा था। हाँ मिल गया एक मिनट। हाँ बोली असंग 400 नंबर तो मैंने देखा था आगे फिर पीछे में चली गई एक मिनट। हाँ 530 पेज इसमें बहुत विस्तार है वैसे कितना क्षेत्र बढ़ने पर कितना काल बढ़ता है वगैरह वगैरह उसमें बातें हैं। तो कहते कि देखो यहाँ 403 नंबर की गाथा है ये जो अभी हमने पढ़ी थी ना भावार्थ पढ़ते हैं उसमें से 530 पेज जीव कांड में से प्रथम कांडक में जघन्य काल के प्रमाण से पूर्वोक्त प्रकार ध्रुव वृद्धि द्वारा ये ध्रुव वृद्धि यानी इतना क्षेत्र बढ़ने पर इतना काल बढ़ता है या इतना काल बढ़ने पर इतना क्षेत्र बढ़ता है उसको ध्रुव वृद्धि कहते हैं और अध्रुव वृद्धि द्वारा एक एक समय प्रबद्ध से असंख्यात समय बढ़ते हैं। अभी वो जाने दो उसको उसके नीचे 404 का हेडिंग देखो 404 गाथा का हेडिंग यहां से आगे विषयभूत क्षेत्र और काल की अपेक्षा देशावधि के 19 कांडक कहूंगा देशावधि के है ना ऐसे आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं। और वहां जो 404 नंबर का है वो आंगुल्या वल्यो भागो असंख्ययोपि असंख्येय वगैरह वगैरह अभी हमने जो पढ़ा तो उसका प्रथम कांडक का जघन्य और उत्कृष्ट क्षेत्र बताया फिर दूसरे कांडक का वगैरह उत्कृष्ट भेद बताएंगे तीसरे कांडक का उत्कृष्ट भेद बताएंगे आगे आगे उत्कृष्ट भेद ही बताए जाएंगे। तो जो अभी हम पढ़ने जा रहे वही बात वहां पर भी है तो वहां से पढ़ते फिर बाद में जो लास्ट में आएगी बात उसको हम पढ़ेंगे बाद में। देखो अब क्योंकि आपके सामने पुस्तकें हैं ना महाबंध की 26 पेज तीसरे नंबर की अभी हमने गाथा पढ़ी थी नीचे उसका अर्थ देखते हैं। चतुर्थ कांडक में आवली पृथक्त्व यानी कुछ आवली काल है और हस्त प्रमाण क्षेत्र है एक हर एक का उत्कृष्ट क्योंकि जघन्य कितना होगा पूर्व का जो उत्कृष्ट है वो इसका जघन्य या उसमें एक समय एक प्रदेश बढ़ा दो। हाँ एक हाथ प्रमाण ये अपना हाथ नहीं है वो 24 अंगुल उससे अंगुल जो 24 होता है बढ़ाने वो प्रमाण की बात नहीं है यहाँ पर परंतु क्षेत्र में रेगुलर हाथ ही लेना है उसमें। पंचम कांडक में अंतर्मूर्त काल है और एक कोश क्षेत्र है। छठे में भिन्न मुहूर्त काल है भिन्न मुहूर्त किसको कहते हैं मुहूर्त में एक समय कम वो भिन्न मुहूर्त और बाकी दो समय कम चार समय कम आवली कम वो सारे अंतर्मूर्त। भिन्न मुहूर्त का एक ही वो जो है एक समय कम 48 मिनट यहाँ सॉरी चौथे की बात पढ़ी ना हमने पंचम कांडक में अंतर्मूर्त काल है और एक कोश क्षेत्र है पढ़ा था। छठे में कोश मुझे अभी 2 माइल का एक कोश होता है। अब यहाँ प्रमाण लेना क्या ऑर्डिनरी लेना हमेशा क्षेत्र तो प्रमाण में मापते हैं परंतु अभी अभी हम अंगुल और ये तो नहीं ये अंगुल में जब लिया ना घनांगुल का तब तो ऑर्डिनरी लिया था ना क्योंकि निगोद की अवगाहना ली थी वो तो ऑर्डिनरी ली। हाँ अभी जो यथायोग्य ले लेना उसमें। सप्तम में कुछ कम एक दिन काल है और 25 योजन क्षेत्र है। छठे में देखा ना भिन्न मुहूर्त और एक योजन, अष्टम में अर्धमास काल है और भारतवर्ष क्षेत्र है। ये 15 दिन आगे पीछे का और क्षेत्र कहाँ तक के पूरे भारतवर्ष का। नवम में साधिक मास काल है और जम्बूद्वीप क्षेत्र है। दशम में वर्ष प्रमाण काल है और मनुष्य लोक प्रमाण क्षेत्र है। ग्यारहवें में पृथक वर्ष पृथक्त्व काल है और रुचक द्वीप क्षेत्र है। रुचक कितना है? 13वां है ना। नौवां नंदीश्वर है और कुंडलवर कितना? 8वां नंदीश्वर है, कुंडलवर एक 11वां और एक 13वां है, कुंडलवर और रुचक में से। हाँ तो बोलो। वो देखो देखो अवधि ज्ञान का विषय की अपेक्षा ये भेद है, कहाँ तक और कितने काल आगे पीछे जान सकता है, वो अवधि ज्ञान की पावर कितनी है उसकी अपेक्षा 19 भेद बताए। हाँ इसमें और भी आएगी, उसमें कौन कितने स्कंद तक जानता है वो भी उसमें आता है, यानी द्रव्य अपेक्षा भेद, क्षेत्र अपेक्षा भेद, काल अपेक्षा भेद और भाव अपेक्षा भेद। द्रव्य और भाव के समान बढ़ते चले जाते हैं, द्रव्य में इतना इतना वो और सूक्ष्म सूक्ष्म तक को जानते रहता है। 13वां मैंने 13वां ही बताया था ना, रुचकवर, रुचकवर और 11वां कुंडलवर है ना। ये 13वां द्वीप है, कुंडलवर 11वां 11वां इतना याद था, क्योंकि हम अकृत्रिम चैत्यालयों की बात करते हैं ना, उसमें वो कुंडलवर के और चक्रवर के देखते हैं ना, अकृत्रिम चैत्यालय मध्यलोक के अकृत्रिम चैत्यालयों में देते हैं ना सारे। मानुषोत्तर के बाद ये दो द्वीपों की बात, नंदीश्वर और फिर ये दो। हाँ अभी हम ये 12वां कांडक देख रहे हैं अवधि ज्ञान का। 12वें में संख्यात वर्ष काल है और संख्यात द्वीप समुद्र क्षेत्र है। वो तो 13वें द्वीप तक गया था उसके। देखो ये जो विभंग ज्ञान है ना, वो साथ ही द्वीप समुद्र तक जान सकता है, ऐसा हमने पढ़ा है कहीं। विभंग ज्ञान, हाँ पर मैंने अन्यत्र भी पहले भी पढ़ा है कि वो सात द्वीप समुद्र तक जान सकता है। हाँ उसकी बात नहीं, ये अवधि ज्ञान की गुण प्रत्यय की बात है। अवधि कहने से यहाँ सम्यक अवधि ज्ञान की बात है, वो विभंग ज्ञान का होता है। हाँ वो मैक्सिमम क्षेत्र, उत्कृष्ट उत्कृष्ट। हाँ और जैसे अवधि ज्ञान कंटिन्यूअस रह सकता है ना, ऐसे विभंग ज्ञान अंतर्मुह से ज्यादा नहीं टिकता, वो बार बार हो सकता है, परंतु अवधि ज्ञान कैसे कंटिन्यूअस है वो, वैसे विभंग ज्ञान नहीं होता। हाँ देखो 13वें में, ये 13वें कांडक में असंख्यात वर्ष काल है और असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण क्षेत्र है। विशेष आगामी 5 कांडकों का द्रव्य की अपेक्षा कथन है। देखो ये तो 13वें कांडक यहाँ तक बताए, अब इसके आगे द्रव्य की अपेक्षा नहीं, कौन से सूक्ष्म स्कंद तक जानता है वो द्रव्य अपेक्षा है। क्षेत्र और काल में बढ़ते हुए आगे आगे के भेद जो है पावरफुल अवधि ज्ञान, उसमें क्षेत्र बढ़ता है और काल भी बढ़ता है द्रव्य में, और वो सूक्ष्म होते चला जाता है। तो 14वें में देशावधि के मध्यम विकल्प रूप विश्रसोपचय सहित, यानी 14वें कांडक है उसमें जो उसका कोई मध्यम विकल्प है उसमें द्रव्य अपेक्षा कौन सा भेद है, तो विश्रसोपचय सहित तेजस शरीर रूप द्रव्य विषय है। अब ये तेजस शरीर में उसका समय प्रबोधन नहीं लिया, पूरा तेजस शरीर का द्रव्य, सूक्ष्म का नहीं, रेगुलर तेजस शरीर जो डेढ़ गुणहानि गुणी समय प्रबद्ध प्रमाण हो जाएगा। अवगाहना नहीं लेना उसका, द्रव्य नहीं, उसमें परमाणु की संख्या लेना है। कुछ भी होगा, अवगाहना नहीं लेनी उसकी, नंबर ऑफ परमाणु को लेना। एक स्कंद, और वो भी विसरा सॉफ्ट है, क्योंकि तेजस के एक एक परमाणु के साथ जीव राशि से अनंत गुणे तो विश्र सोपचे के परमाणु हो गए, तो उसका वो स्कंध लेना। 15वें में विश्र सोपचे सहित कार्मण शरीर स्कंध विषय है, यानी वो और सूक्ष्म हो जाता है ना। 16वें में विश्र सोपचे रहित केवल तेजो वर्गणा विषय है, यहाँ वर्गणा लिया। ऊपर का हमने पढ़ा ही नहीं ना, बाद में पढ़ लेते, अभी 6 तक पढ़ लेते। पहले पढ़ देंगे, बाद में पढ़ेंगे, ऊपर पढ़ेंगे। 16वां हुआ। 17वां में विश्रसोपचय रहित केवल भाषा वर्गणा विषय है, अब वो शरीर का स्कंद विषय था, आज्ञा के भेदों में वर्गणा को लिया। एक समय प्रबद्ध में इतनी अनंत वर्गना और एक एक वर्गना में जो कुछ, तो नहीं वो कितने सूक्ष्म तक चाह रहे हैं, है ना?
तो भाषा वर्गना में कितना लेते
हैं? उसका अपना वर्गना लेना है।
संपूर्ण भाषा वर्गना
संपूर्ण कैसे होते हैं? एक समय प्रबद्ध में इतने सिद्ध राशि के अनंत विभाग, इतनी वर्गनाएं होती है, और एक वर्गना में कितने परमाणु होते हैं उसको लेना। हम सारी जो 23 वर्गना बढ़ी ना इतनी बार, उसमें जो वर्गना का प्रमाण है उसको लेना है। 18वें में विश्रसोपचय रहित केवल मनोवर्गना विषय है। 13वें 14वें आदि कांडकों में असंख्यात गुणित क्षेत्र तथा असंख्यात गुणित काल है। क्षेत्र भी असंख्यात गुणा और काल भी असंख्यात गुणा होता है, अर्थात 12वें कांडक के काल तथा क्षेत्र से। देखो 5वें सूत्र में हमने 12वें तक आए थे हमने, उसके आगे यानी वहां क्या लिया था, असंख्यात वर्ष काल और असंख्यात द्वीप समुद्र क्षेत्र, उसको असंख्यात गुणा कहेंगे तो भी असंख्यात कहेंगे ना, वो काल भी असंख्यात गुणा होता है और क्षेत्र भी असंख्यात गुणा। 12वें तक तो नहीं बताया, परंतु उसमें कैसे लेना है, जो हमने पहले में देखा था द्रव्य अपेक्षा भेद, आगे आगे वाले वो ध्रुव भागहार होता है। ध्रुव भागहार ने फिक्स संख्या है, पहले वाले का जो होगा द्रव्य का यानी संचय, उसको उस भागहार की, तो बाद में जो रहता है एक भाग वो नेक्स्ट वाले का द्रव्य, उसको फिर भाग देगा, फिर नेक्स्ट वाले का, फिर उसको भाग दो आगे वाले का, इस तरह से होता है। तो ये हमने 12वें के बाद आगे आगे असंख्यात गुणा लेना ये कह रहे यहाँ पर, अर्थात 12वें कांडक के काल तथा क्षेत्र से असंख्यात गुणित काल तथा क्षेत्र 13वें कांडक में है, इसी प्रकार आगे भी जानना। विशेषत 19वें कांडक में एक समय कम पल्ले प्रमाण काल है, यानी उत्कृष्ट देशावधि की बात है, देशावधि के 19 कांडक की है, सबसे जो उत्कृष्ट देशावधि है वो पल्ले में एक समय कम काल तक वर्तमान से भविष्य का भी और उतना ही भूतकाल का जान सकते हैं। संपूर्ण लोकाकाश क्षेत्र है और पूरा लोक उसका क्षेत्र है। आगे आगे जो जो भेद हो गए ना परमावधि को वगैरह, असंख्यात लोक कहेंगे, पर पुद्गल तो एक ही लोक में है, उनकी शक्ति असंख्यात लोक तक जानने की, इस तरह से आगे अर्थ करेंगे। अभी ये जो हमने 6 तक किए ना, तो हम 6 तक पढ़ेंगे ऊपर वो गाथाएं, 2 की और 3 की पढ़ी थी ना हमने, और 4 से पढ़ेंगे, 4, 5, 6। भरदंत अथमासम साधियमासम च जम्बुदीवम ही वासम च मनुष्यलोके वासपुदत्तं चरुजगं हि संखेज्यदि मे कालं दिवसमुद्दाहवन्ति संखेज्या कालं हि असंखेज्यो दिवसमुद्दाहवन्ति असंखेज्या तेजाकम्म शरीरं तेजादौवं च भासदौवं च बोद्धौवं असंखेज्या दिवसमुद्दाय वासाय। अब यहाँ सात नंबर को पढ़ेंगे फिर नीचे पढ़ेंगे। कालो चदुणं बुद्धि कालो भजिदौवे खेत बुद्धिये बुद्धियं दौवपच्चयं भजितौवं खेत कालो य। देखो उसका अर्थ नीचे। काल की वृद्धि होने पर द्रव्य क्षेत्र काल तथा भाव रूप चारों वृद्धियां होती है। अब इसको समझने के लिए जरा इसी के आधार से मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि पहले द्रव्य की वृद्धि होते होते बहुत सारे भेद हो जाते हैं, तब क्षेत्र में एक प्रदेश की वृद्धि होती है। क्षेत्र में इतने 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 भेद होने पर जाके काल में एक समय की वृद्धि होती है। उसका अर्थ है जब काल की वृद्धि होती है तब क्षेत्र भी बढ़ रहा है उस समय, और द्रव्य का भी भेद आगे वाला हो रहा है, और द्रव्य के साथ भाव भी है। यानी जब काल की वृद्धि होती है तब द्रव्य क्षेत्र और भाव तीनों की वृद्धि होती है। पर क्षेत्र की वृद्धि होगी इसलिए काल की वृद्धि होगी ऐसा नहीं है, क्योंकि क्षेत्र की वृद्धि होने पर द्रव्य की तो वृद्धि है, क्योंकि द्रव्य के इतने भेद होने पर आपके क्षेत्र के भेद हो जाते हैं। उसको मैं पुस्तक में से बताती हूँ आपको। देखो ये द्रव्य की अपेक्षा जो भेद है ना, अभी हमने कहा 404 के आसपास देख रहे थे ना, उसके पूर्व में क्या पेज नंबर उस जमाने में, अच्छा नीचे लिखा है
हमने पेज नंबर लिखा है, पेज नंबर 535
वो तो अभी हमने देखी, वो बात आप करें।
हाँ
ये द्रव्य की अपेक्षा भेद है ना, उसकी बात करनी अपने को। वो 535 जो है ना, वही मैं बताना चाहती हूँ। हाँ वो बताना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों कहा है। देखो द्रव्य के भेद कैसे होते हैं, वो ध्रुव भागहार नाम का जो भागहार है उसको भाग देने पर उसका दूसरा भेद द्रव्य की अपेक्षा, तीसरा भेद, चौथा भेद, पांचवा भेद, हाँ फिक्स भागहार के। हाँ देखो पेज नंबर 524 निकालना। ये जो दूसरा पैराग्राफ है, नया पैराग्राफ, सूच्यंगुल के असंख्यात वे भाग मात्र द्रव्य अपेक्षा भेदों में एक प्रदेश अधिक क्षेत्र को जानते हैं। यानी जब जब द्रव्य का भेद कैसे निकालना, पहले वाला जो होगा उसको ध्रुवाहार से भाग देंगे तो दूसरा भेद, उसको उसी भागहार से भाग देंगे तीसरा भेद, ऐसे कितने भेद जाएंगे तो कहते सूच्यंगुल के असंख्यात पे भाग, तब जाके क्षेत्र के अपेक्षा एक प्रदेश की वृद्धि होगी। तो क्षेत्र का दूसरा भेद, क्षेत्र का तीसरा भेद, क्षेत्र का चौथा भेद, इस तरह से क्षेत्र के अनेक भेद जाने पर जाके काल में एक समय की वृद्धि होगी, ये उसका अर्थ होता है। और उसी का जो सर्वाला जो बताए 535 पेज पर, जो अभी हम यहाँ महाबंध में भी पढ़ रहे थे कि वही बात है वहां पर सात नंबर में, काल की वृद्धि होने पर द्रव्य क्षेत्र काल तथा भाव रूप चारों वृद्धियां होती है, क्योंकि द्रव्य के असंख्यात भेद जाते हैं तब जाके एक क्षेत्र में दूसरा नंबर आता है क्षेत्र की वृद्धि होती है। क्षेत्र में इतने ज्यादा भेद हो जाएंगे तब जाके काल में एक वृद्धि होगी। यानी काल में वृद्धि होती है तो क्षेत्र की वृद्धि हुई है ना उसका अंतिम भेद से आगे, और द्रव्य की तो चल ही रही हर समय, यानी हर इतने इतने बाद, तो इसलिए काल की वृद्धि है तो सबकी वृद्धि है ये कह रहे हैं। क्षेत्र की वृद्धि होने पर काल की वृद्धि भजनीय है, अर्थात हो भी और न भी हो, क्योंकि क्षेत्र की अपेक्षा अनेक भेद जाने पर काल की वृद्धि होती है, हर बार वो काल की वृद्धि नहीं होती है, इसे भजनीय कहा। द्रव्य और भाव की वृद्धि होने पर क्षेत्र और काल की वृद्धि भजनीय है। द्रव्य और भाव की वृद्धि एक साथ होती है, द्रव्य का दो नंबर का भेद है तो भाव का भी दो नंबर का हो जाता है। देखो काल का होता है तो सब हो रहे हैं, क्षेत्र का हो रहा है तो द्रव्य और भाव तो हो ही रहे हैं, परंतु काल का हो भी नहीं हुई हो। अब जहाँ द्रव्य की अपेक्षा भेद हो रहे हैं तो द्रव्य और भाव एक साथ हो रहे हैं, परंतु उसमें क्षेत्र और काल दोनों भजनीय है, ये उसका अर्थ होता है। अब महाबंध में आठ नंबर का जो ऊपर का गाथा है उसको पढ़ेंगे, परमावधि की बात है ना। परमोधिम संखे जा लोगामेत्ताणि समय कालोदु रूवगदं लभति सौदौवं खेतो मम गणि जीवेहि। उसका अर्थ नीचे देखो, परमावधि का काल, काल की बात है ना। असंखेज्जा लोगामेत्ताणि समय कालोदु, एक समय अधिक लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण है और क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण है, जो अग्नि का एक जीवों की संख्या प्रमाण है। एक प्रदेश अधिक लोकाकाश प्रमाण इसका द्रव्य है। देखो उसमें क्या बताया है परमावधि में, परमावधि के जितने द्रव्य क्षेत्र काल भाव सभी युगपत उसके भेद होते जाते, और उसमें भी वो द्रव्य की अपेक्षा भेद हो जाता है तो क्षेत्र और काल भी बढ़ते चला जाता है, और एक एक भेद में द्रव्य और क्षेत्र क्षेत्र और काल असंख्यात गुणा बढ़ता है प्रत्येक भेद में, और द्रव्य में ध्रुव भागहार से भाग देते चला जाना है, ये उसका अर्थ होता है। परंतु यहाँ जो उन्होंने बताया ना, एक समय अधिक लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण है, वो जगन्य काल होगा क्योंकि हमने देखा वहां पर लोकाकाश तो क्षेत्र था उसका, और यहाँ एक समय क्यों कहा। काल ज्यादा है वो असंख्यात गुणा है, परमोधि असंख्यज्जा लोगामित्ताणि समय कालो दो, यानी असंख्यात लोग समय भी काल गाथा 16 में लिया था उसको 416 जो उसका उत्कृष्ट काल कितना, एक समय कम पल्ले था ना, अब उसको एक समय पल्ले को कौन सी 537 पेज पर है देखो, जो उसका जो भेद है उसका जो संकलन धन है, भी पहले भेद में तो संकलन धन एक ही है ना, उतने आवली के असंख्यात पे भाग मानकर परस्पर गुणा करने में उसको भेद में गुणकार होता है, यानी आवली के असंख्यातवे भाग से गुणा करना है उसको। नहीं होगा ना, पता नहीं है ये, जरा मुझे वो बैठा नहीं एक समय कम उन्होंने कैसे कहा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र क्षेत्र देखो देखो, क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण है। वो असंख्यात लोक की, वो असंख्यात की कितनी है, असंख्यात लोक अग्नि का एक जीवों की संख्या कितनी है, असंख्यात लोक उतने उसका उतना क्षेत्र है असंख्यात लोक। वो असंख्यात की वैल्यू कितनी है, एक लोक की वैल्यू मालूम है असंख्यात वैल्यू। वो असंख्यात कौन सा वाला असंख्यात लेना, अग्नि का इनको उनकी संख्या प्रमाण है, क्योंकि हमने देखे ना उसके टोटल भेद कितने हो गए, अग्नि का एक की संख्या मल्टीप्लाइड बाय अग्नि का एकों की अवगाहना के भेद, इतने परमावधि के टोटल भेद हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। नौ नंबर, नौ दस एक साथ ऊपर पढ़ेंगे फिर बाद में अर्थ देखेंगे। संखे जोजनानम ज्योतिषियाणम जहन्नोधी असुराणम संखे जा जोजन कोड़ी शेष ज्योति संतानम संखाती दसहसा उक्कसेनोधि विशे सयोदु। नीचे उसका अर्थ, व्यंतरों तथा भवनवासी देवों में जघन्य क्षेत्र 25 योजन प्रमाण है। मुझे मेरी अपेक्षा मुझे ऐसा लगता है वो नीचे तक कितना क्षेत्र आड़ा नहीं, वो नीचे तक के 25 योजन की बात है। ज्योतिष किसको, परमावधि का
हो गया
हाँ वो हो गया। अभी देवों में उसका क्षेत्र बता रहे, देवों में क्षेत्र बता रहे। तो भवनवासी देवों में जघन्य क्षेत्र 25 योजन है। ज्योतिष देवों का जघन्य क्षेत्र संख्यात योजन है। असुर कुमारों का उत्कृष्ट क्षेत्र संख्यात कोटि योजन है, इन्हें करोड़ों योजन तक। शेष नौ भवनवासी असुर कुमार को छोड़कर बाकी के तथा व्यंतरों ज्योतिषों का उत्कृष्ट क्षेत्र, जघन्य तो हमने 25 योजन देखा था ना, उत्कृष्ट असंख्यात हजार योजन है। सौधर्म द्वीप का क्षेत्र प्रथम नरक पर्यंत है, ऊपर पढ़ने 11 नंबर। सक्की साणे पढ़मम दोच्छदु सन्न कुमार माहिंदे तच्छदु बम्भलंतय सुक्क सहस्रया च उत्थी। सौधर्म द्वीप का क्षेत्र प्रथम नरक पर्यंत है, पहले दूसरे का पहले नरक तक, सनत कुमार महेंद्र का दूसरे नरक तक, ये दूसरा युगल का दूसरे नरक तक। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ठ वासियों का तीसरे नरक तक, यानी तीसरे और यानी पांचवा छठा सातवा आठवा इस तरह से। शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार वाले चौथे नरक पर्यंत जानते हैं। आनत प्राणत आरण अच्युत ऊपर रह गया 12 नंबर। आनद पाणद वासी तथ आरण आरण चुदा देवा पसंति पंचमखिदिम छठी गे वे जया देवा। नीचे कितने क्षेत्र तक, बस इतना ही। आनंद काल यथा योग्य उसमें अभी देखेंगे उसके भेद भी कितने हैं। हाँ ऊपर अपनी ध्वजा पर्यंत और नीचे का ही एक क्षेत्र है। आनंद प्राण तारण अच्युत स्वर्गवासी पांचवे नरक तक और नौ ग्रेवेश्वर की छठी पृथ्वी पर्यंत देखते हैं। नहीं छठी पृथ्वी नहीं छठा नरक। राजू कितने नहीं बजाया, पृथ्वी बताई, सातवीं पृथ्वी। 13 नंबर। सव्वं पिलो गणालिं पश्यन्ति अनुत्तरे सुजय देवा संखे तेयसकं मे रूवगदमणंत भागोय। नव अनुदिश तथा पांच अनुत्तर विमानवासी देव सर्वत्र रसनाली को देखते हैं, क्योंकि सातवें नरक तक यानी नीचे तक सब सब यानी पूरे रसनाली तक देखते हैं, यानी पूरे नीचे एक राजू तक भी जानेंगे सब अपने हो बताएंगे। अभी देखो विशेषार्थ, सौधर्मादिक के देव अपने विमान की ध्वजा के दंड के शिखर पर्यंत ऊपर जानते हैं। नव अनुदिश तथा पांच अनुत्तर विमान सी देव अपने विमान के शिखर पर्यंत ऊपर देखते हैं, अपने अपने ध्वजा दंड तक। नीचे बाह्य तनुवात वलय पर्यंत संपूर्ण त्रसनाली को देखते हैं, पूर्ण त्रसनाली नीचे देखी, नीचे संपूर्ण अंतिम वात वलय तक। अनुदिश विमान वाले कुछ अधिक 13 राजु प्रमाण तथा अनुत्तर विमान वाले कुछ कम 21 योजन रहित 14 राजु प्रमाण क्षेत्र को देखते हैं, क्योंकि अनुदिश वाले वो अनुत्तरों को नहीं देखते, उसके नीचे का नीचे तक देखेंगे, और अनुदिश वाले ऊपर का अपने ध्वज दंड तक। उसके ऊपर देखो, उसके 12 योजन ऊपर जाके आठवीं पृथ्वी है, आठवीं पृथ्वी इटसेल्फ 8 योजन की है, और ऊपर जो है तीनों वात वाले मिलकर एक योजन में कुछ कम है। इसलिए क्या नहीं जानते ऊपर त्रसनाली में कितना कम करना, ऊपर के 21 योजन यानी 21 में कुछ कम करना ना, 425 धनुष कम कर देना, समझ में ना 21 क्यों लिए। उनकी ध्वज दंडा के ऊपर इतना ही है, अंतिम वात वाले तक इतना ही है एरिया। गाथा के उत्तरार्ध में अवधि के विषयभूत द्रव्य को जानने का क्रम कहते हैं। अवधि का विषयभूत द्रव्य कैसे निकालना, अपने अपने अवधि ज्ञानावरण कर्म के द्रव्य में। अभी अवधि ज्ञानावरण का जितना कर्म है, द्रव्य है, डेढ़ गुणानि गुणित समय प्रबद्ध तो पूरा होता है, और अवधि ज्ञान ज्ञानावरण में जितना उसका आता है ना, हमने देखा ना किस तरह से डिवीजन होते हैं, पहले में पहले 7 या 8 में डिवीजन हुई है, फिर ज्ञानावरण में जितना आया है वो पहले में पहले सर्वघाती अनंतवा भाग है, और देशघाती के 4 हिस्से होते हैं। पहले समान भाग करना, पहला बहुभाग मति ज्ञानावरण, फिर श्रुत ज्ञानावरण, फिर अवधि, वो अवधि ज्ञानावरण का द्रव्य कहलाएगा। तो अवधि ज्ञानावरण के द्रव्य में एक बार ध्रुवहार का भाग देने पर अपने क्षेत्र के प्रदेश में से एक एक प्रदेश कम करते जाना चाहिए, और यह कार्य तब तक करते जाना चाहिए जब तक कि क्षेत्र के प्रदेशों का प्रमाण घटते घटते समाप्त न हो जाए। यानी उसके कितने आप इमेजिन कर सकते हैं, कितनी बार ध्रुवहार का, यानी वो कितना द्रव्य होगा जिसको हम खाली डेढ़ गुणानि गुणित कहते हैं। अभी उन्होंने हर एक का अपना अपना अवधि का क्षेत्र बताया है, तो उसमें एक प्रदेश कम करो, एक प्रदेश इज नथिंग उसके सामने, कितने इतने योजनों का डिस्टेंस तक जान रहे, उसमें एक प्रदेश कम करो, एक बार ध्रुवहार को भाग दो, एक प्रदेश कम करो, एक बार ध्रुवहार का भाग दो, एक प्रदेश कम करो, इस तरह से यहाँ। हाँ तो कहते कब तक कि क्षेत्र का प्रमाण समाप्त हो जाए, फिर भी द्रव्य समाप्त नहीं होगा ये कह रहे। इस प्रकार करने के अनंतर जो अनंत भाग प्रमाण द्रव्य अवशिष्ट रहेगा, वहां वहां उतना उतना ही द्रव्य प्रमाण समझना चाहिए। यानी उसका द्रव्य का नहीं, परमाणु तक तो केवल सर्वावधि में ले सकते हैं, एक छोटा स्कंद तक जानेंगे बस इतना ही। अब 14 नंबर, ये देवों की बात होगी ना। तेजा शरीर लंबो उक्कसेन दुतिरख जोनीनम गाउद जन्न मोधी निरये सुयजो जनुक्कसम। तिर्यंच गति में अवधि का उत्कृष्ट द्रव्य, द्रव्य की बात है, तेजस शरीर के द्रव्य प्रमाण है, क्षेत्र भी इतना ही है, अर्थात तेजस शरीर द्रव्य के परमाणु प्रमाण आकाश प्रदेशों से जितने द्वीप समुद्र व्याप्त किए जाए उतना है वो असंख्या द्वीप समुद्र प्रमाण होता है। हाँ, मनुष्य 3 इंचों में हॉरिजॉन्टल ले लेना है। नहीं नहीं, वो तो आकाश प्रदेश कैसे अनंत हो जाएगी, क्या तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है जरा देख लो। तिर्यंश गति में अलग से बात है क्या? अनंत क्षेत्र तो ऐसा भी नहीं हो सकता है ना। नहीं, इसमें तो मनुष्यों में और तिर्यंचों में तो चौकोर घनक्षेत्र लिया, बाद में तो मनोपरिज्ञान ही चालू हो गया। तिर्यंचों की बात वहां विस्तार से नहीं है, देवगति में बताई है। बाद में वहां तो मनोपरिज्ञान की बात चालू हो गई है। जरा यहीं से देख लेते हैं। देखो, ऊपर सब पढ़ना पड़े। तेजा शरीर लंबो उपकसन तिरख जोनिनम गाँव द जहन्न मोधी निरेश योजन उपकसम। ये तो नारकी में बताया, गाँव गाँव यानी वो तो एक कोस जहन्न और योजन उत्कृष्ट है, वो नरक गति की बात है। पंत नहीं, उसमें फुटनोट में नहीं होगा, उसमें कोई आंकड़ा नहीं है। तिर्यंच गति में, अच्छा नीचे तिरश्चाम उत्कृष्ट देशावधि उच्चते तेजस शरीर प्रमाणम द्रव्यम। ये द्रव्य है वो तेजस शरीर प्रमाण है। कियच्छत यानी वो कहाँ है, वो उत्कृष्ट द्रव्य कहाँ का लेना, कहाँ तक का लेना। असंख्येय समुद्राकाश प्रदेश परिच्छिन्न नाभि असंख्या भी तेजस शरीर द्रव्य वर्गना भी निवर्तितम तावद असंख्येय स्कंधानंत प्रदेशान जानाति इति अर्थः। यानी वो अनंत प्रमाण वहां तक के अनंत प्रदेश ही उसको, अनंत परमाणु का प्रमाण है ना, तेजस शरीर का अनंत प्रमाण है, तो वहां तक के इतने द्रव्य को जानता है। इसका अर्थ जरा अलग से किया है। देखो देखो यहाँ क्या कहा, तिर्यंच गति में अवधि का उत्कृष्ट द्रव्य तेजस शरीर के द्रव्य प्रमाण है। उत्कृष्ट द्रव्य ने इससे सूक्ष्म को नहीं जानेगा, ये इसकी लिमिट है ना, यानी इतने स्कंध तक को जानता है। देखो क्षेत्र भी इतना ही है, अर्थात तेजस शरीर द्रव्य के परमाणु प्रमाण आकाश प्रदेशों से जितने द्वीप समुद्र व्याप्त किए जाए। ऐसा नहीं, तेजस शरीर के द्रव्य के परमाणु प्रमाण, अभी यहाँ उसका जो एरिया है ना उसके, वो लेना आकाश प्रदेश। तेजस परमाणु, सुनो जरा भी, तेजस शरीर की जो अवगाहना है उसको ले सकते हैं हम, उसमें आकाश के कितने प्रदेश आए उसको लेना, द्रव्यों की संख्या नहीं लेना। वो द्रव्य की अवगाहना में जितने आकाश प्रदेश है, कितने है तो असंख्यात होगी ना, तो उतने असंख्यात द्वीप समुद्र लेना। देखो देखो उसका द्रव्य है ना, उसका तो ले लिया हमने, अभी उसकी जो अवगाहना होगी उतने अवगाहन में कितने आकाश प्रदेश है, यानी तेजस शरीर द्रव्य के परमाणु प्रमाण ने अवगाहना प्रमाण।
तो ये बाबत से तेजस शरीर बाबत से का सबसे बड़ा होता
देखो उसका वो अवगाहना नहीं लेनी है अभी, उसके द्रव्य के जो तेजस शरीर का द्रव्य नहीं, जो हम प्रमा वर्गणा की अवगाहना अलग बताई गई है शास्त्र में, समय प्रबद्ध की अवगाहना अलग बताई है, उसके अनुसार चलना। क्योंकि उतने ही द्रव्य जो है वो जीव कितना भी छोटा बड़ा होगा, ऐसे मरकर वो चीटी मरकर अभी महामत्स्य हो जाएगी, थोड़ी उसके द्रव्य बढ़ने वाला है, द्रव्य उतना ही रहेगा कि नहीं उतना, इसलिए वो ले लेना। वो उसकी अभी यहाँ ना उसके अवगाहना जितने आकाश के प्रदेश हो गए, असंख्यात हो गए, उतने द्वीप समुद्र, यहाँ इतना ही समझना कि असंख्यात द्वीप समुद्र, नीचे जो उनका अर्थ दिया है वो बराबर है, यानी इतने असंख्यात द्वीप समुद्रों में जो अनंत प्रदेशी वाला जो अनंत परमाणु वाले स्कंद है उनको जानता है। हो गया ये नरक गति की बात पढ़ लेते। देखो नरक गति में अवधि का जघन्य क्षेत्र एक कोष, उत्कृष्ट क्षेत्र एक योजन है। ये अवधि के अनावरण समाप्त कर लेते हैं। आगे मनोपरिज्ञान है। देखो 15 नंबर उक्कस मनुष्य सुय मनुष्य तेरैच्छियं जहन्नोधि उक्कसम लोगमेतम परिवादी तेन परम परिवादी। उत्कृष्ट देशावधि मनुष्यों में ही होता है क्योंकि वो मुनियों के होगा। जघन्य देशावधि मनुष्य और तीर्यंचों में होता है। उत्कृष्ट देशावधि का क्षेत्र लोक प्रमाण हमने देखा था पहले। यह प्रतिपाती होता है अर्थात इसके धारक का मिथ्यात्वादी में पतन संभव है, हमने देखा है। तो आगे वाले जो है वो तो परमावधि तथा सर्वावधि अप्रतिपाती होते हैं और वो उसी भाव में मोक्ष जाने वाले ही जीव होते हैं, चरम शरीरियों को होता है। परमोधि असंख्य जा लोगामित्ताणि समय कालोधु रूवगदम लभति दौवम खेतोपम गणित जीवे हिम। परमावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र लोकालोक, लोकालोक कहाँ, असंख्यात लोक है, लोकालोक नहीं। लोगामित्ताणि समय कालो वो निकालो, असंख्यात लोक प्रमाण है कहाँ। यह अग्निकायिक जीवों की संख्या प्रमाण है। परमावधि का काल समयाधिक लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण है। यह असंख्यात वर्ष रूप है। जब हम काल को क्षेत्र में गिनते हैं ना, यानी उतने प्रदेशों को उसमें हम कालों में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि हमने देखा अंगुल के असंख्यात पे प्रमाण क्षेत्र में इतने नंबर ऑफ प्रदेश है कि उसको अगर हम समयों में कन्वर्ट करेंगे तो असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी चली जाती है। तो लोक में कितने प्रदेश हो गए उसको ये काल में इतनी बात होती है। इसलिए समयाधिक लोकाकाश कहा, इसका द्रव्य प्रदेशाधिक लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण है। विशेष अवधि ज्ञान के द्रव्य की बात है, क्षेत्र की नहीं। द्रव्य नहीं, उसमें उसका
सर्वावधि की बात है
ना, सर्वावधि नहीं, परमावधि का। ये कुछ कंफ्यूजन है इसमें जो जो है ना। हाँ खेतोपम अग्नि जीवे ही, उसमें तो हमने देखे उसके भेद कितने होते, अग्नि काय के अवगाहना के भेद मल्टीप्लाइड बाय संख्या। हाँ विशेष अवधि ज्ञान के जितने भेद कहे गए उतने ही अवधि ज्ञानावरण कर्म के भेद है, बस इतना ही बताना था। अवधि ज्ञान का अवधि ज्ञानावरण कर्म के साथ अविनाभाव संबंध है, अतः श्रुत ज्ञान के समान यहाँ भी अवधि ज्ञान के वर्णन द्वारा अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का वर्णन हुआ समझना चाहिए। इस प्रकार अवधि ज्ञानावरण कर्म की प्ररूपणा हुई। अब यही रुकेंगे, कल मनपरे ज्ञानावरण की बात पढ़ेंगे। अब यहाँ तो त्रुटि तंत्र समाप्त हुआ है, तो अभी आगे वाला कौन सा पुस्तक कब लगेगा मैं जरा आपके इसके आधार से बताती हूँ। देखो महाबंध पुस्तक एक में 37 पेज पर वो लगेगा हमें, बंद स्वामित्व विषय जो लिखा है ना वहाँ हमें वो कल लाने की शायद जरूर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। परसों धवला पुस्तक 8 लाना है आपको। 6 नंबर लेके जाओ, अभी 6 नंबर का कार्य हो गया। अब 37 पेज पर 8वीं पुस्तक लगेगी। हाँ परवा, कल नहीं लगेगी, कल थोड़ा लगेगा तो भी चलेगा, नहीं लाए तो भी। हाँ हाँ वो भी नहीं लगेगा, कल तो नहीं लगेगा, बाद में लगेगा। अभी यहीं रुकेंगे। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक न सदा देत हो।